ధ్యానం తస్మై నమో మహాపతన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ దీనబంధో జగత్పతే గోపీ ప్రగోపికాంత సప్తాంతన గౌరాంగీ రాజే చింతాధరి ప్రణమాంగి ఆదేవి
ये सब विचार ही नहीं है, ये सब नहीं।
ये तो इस जगत में साधन के समय के लिए ऐसा सब कह रहे बतला रहे, जिससे कि किसी का किसी एक विषय में लोप हो जाए, ये भी समझ रखो। जिसके अंदर में जिस चीज की पोटेंसी है उसको उसी तरह का ही लोभ आएगा, ना? वो किसी दूसरी उससे नहीं आएगा।
पहले सत्यवती में
वो सत्ता अच्छा लगता है,
नहीं पहले सत्यवती में बताया गया
कि आराधना जी समझाए पति में, यदि वैसी अपनी कृपा कर दें कि उस स्थिति में पहुंच जाए तब हो सकता, अन्यथा अभी जितना सिद्ध भाव प्रकट नहीं होगा लाख हम चेष्टा करे समझ में वो खुलखलापन बनेगा। इसलिए जहाँ तक ये लोग समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी पात्रता है वहीं तक हम लोग समझ, और भजन करके इन चीजों को भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से इससे उपलब्धि करने की
चेष्टा। अभी साधन के दृष्टि में साधारण रूप से लोग साधन भजन कर रहे हैं और बहुत से लोग देखा जाता है कि बड़े राधा जी के भक्त बन करके और उपासना करते हैं, मुझे बस कोई बास्तव रस में कोई चक्कर रस में तो कोई जीवन जाए कुछ कहते रहते हैं, तो इनका ये मतलब नहीं
है किसी किसी का देखती है किसी किसी का चीजा उन लोगों को जब निकट आते हैं बात
पता नहीं चलता है कि स्थायी भाव हो गया या नहीं। स्थायी भाव
में अधिकांश लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो मायावादी है, मायावादी सबके हैं, उनको कोई रस से कोई तत्व से कोई संबंध, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है और वो उस रस में प्रतिष्ठित हो जाएगा ये कभी नहीं पसंद, कुछ तत्व ज्ञान होना चाहिए। अथवा जब भी वो प्रकट हो गया वो भाव लो तो ये अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसे कोई एक तत्व किसी को रूप हो, लोग होता है मैंने रुचि के समय रुचि से पहले ये लोग वही पे होता है। हम एक भक्त को रुचि से आरंभ किया भक्ति लोग से राजा मुगा से, इसका मतलब है कि वो पहली श्रद्धा शीर्षाधिगम फिर श्रद्धा गुरुकरण तत्व ज्ञान ये सब आकर के भजन करके अनर्थ निवृत्ति की जो अवस्था आएगी निष्ठा आ जाएगी और निष्ठा के बाद में जो रुचि होगी यहाँ तक उसने पार कर लिया, उसके अंदर में जो कुछ देखेगा था उसमें रुचि वाले में आ गया है ये समझे। ऐसा नहीं कि वो अंधा है उसको तब तक ज्ञान कोई कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लोग हुआ कि राधा के कृष्ण में वो मिल जाना चाहता है तो ये कहा हुआ, इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए वो कभी भी अंधा नहीं, उसको तब तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा जो बताया ना ज्ञाने प्रयास
जीवन
इसका तात्पर्य सतान प्रसंग विद्यमित करण रसायन तथा पर जो आसु अपनी ये अपने आप ये सब आएगा। तब तो ज्ञान लोग होने लगा तो इसका मतलब है जैसे ये सब चीजें हो गई इसको पार करके सब यहाँ पर गया है, सब वो रती हुई है और सब उसमें हनुमान जी बंदर है, बंदरों जैसा भी सेवा करते हैं उनमें कोई भी तत्व ज्ञान इत्यादि कोई पुष्ट नहीं, ऐसा होगा आखिर इसमें समस्त तत्व ज्ञान भरा पड़ा है मुक्त तक होने तक जो कुछ है सब सब चल बंदर नहीं है और अंधाधुन रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं, सब समर्थ हैं मुक्त हैं, वो कितने साधन किए होंगे ज्ञानी से परिकर हूँ वो शंकर जी हैं, इसलिए उनमें सब कुछ एकदम है, नीचे की जितनी भी चीज है चल बंदर ही नहीं है।
ভাব যখন প্রকাশিত হয় তখন কি হয় না চমৎকারিত এবং বিস্তারিত তখন ধীরে ধীরে তার ওই রসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান।
আপনি এই সাধু সংহিতাদি করার সংস্কার এই দুটা মিলিত হয়ে তারপরে
এছাড়া যেমন ভারীর লক্ষণে দেখানো হয় যে শান্তির অবর্তের আলোচন বিরক্তির মানুষ উন্নতি এসব লক্ষণ যা উদয় হতে গিয়ে দেখা যায় সব সমঝা যায় কি ভাব লাগবা নেই তো ইয়ে ভাব নেই ইয়ে তো প্রতিবিম্ব
ভাব
হয় ভাব হয় কি ভাব দিতে ভাব প্রতিবিম্ব মানে ভাব এসে রতি মে ইহা পর স্থায়ী ভাব তো ইয়ে
এক আদমি এক লড়কি আর এক লড়কা পতাজি হমকো রাধা জি কি দাসি হোনা চাই আর বিবাহ করি ছটক ছটক কর রে সব বিবাহ হয়ে যায় সব বিবাহ আচ্ছা তো ভাব হওয়া কি নেই আর লোক হওয়া কি নেই
ছোটি সি বালিকা হো যে সবই কৃষ্ণ কো বাতল ভাব সে দেখতে হ্যাঁ পুত্র রূপ মে সবই
कृष्ण के अतिरिक्त अभी उनके अंदर में कोई भी किसी के प्रति भी कुछ नहीं आएगा सब कुछ हुआ और जब अभी मन धर्म रहा विषम में क्रोध है काम है ये सब चीजें परिपूर्ण मात्रा में तो कहां ये सब इसलिए वो सब बेकार की वो आभास भी नहीं है वो कुछ किसी वो संसारिक चीजों के समान उसको मान करके जिसमें कुछ आनंद खुलता है भक्ति का निराला ही स्वभाव इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कहा था ये भाई ये सब सिद्ध अवस्था की चीजें नित्य सिद्ध परिकरों की बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि कमी से भी किसी को इसीलिए हम लोग निश्चलन कर रहे हैं राय रामानंद विशाखा और महाप्रभु जी कृष्ण उन दोनों में बातें हो रही हैं और इसकी बातें हम लोग यहाँ पर जब ही थोड़ा सा भी चिंता हम लोगों के ऊपर में पड़ जाए तो हम लोग का बहुत अभी यही चीजें जो हम लोग पढ़ सुन रहे हैं अभी आज से हमने पहले बहुत बार पंकज पहले जिसको बात की उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ समझने की चेष्टा करता अब इस बार हम लोग कर रहे हैं तो विशेष रूप में चर्चा भी
करते और
समझाने के लिए ये सब किया इसके प्रसंग जो लोग समझे यदि इसके बाद में हम लोग फिर कभी करेंगे तो तुम लोग भी इसको इस रूप में न सुन करके दूसरे रूप में सुन आज जो पहली बात सुनेंगे उनके वैसा समझ में नहीं आएगा साधारण उनके समझ तो हम लोगों ने मई भक्त ही भूटा नाम अमृत का आयता सके उसका भी साथ हमने जो गुरुओं के लिए भगवान के प्रति जो भक्ति होती है ये कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से हमारे प्रति जो भक्ति है अमृत स्वाय कल्पन अमृत स्वाय बतलाया मुक्ति से किंतु ये मुक्ति वो निर्विशेष मुक्ति नहीं
स्वरूप
स्वरूप ने व्यवस्थित वाली बतला और जन्म मरण से उपस्थिति साधारण साधन भक्ति से ही क्लेश अग्नि है ये क्लेश अग्नि का होना ही इसलिए वैष्णव मात्र को ही दृष्टि से देखना है वैष्णव मात्र कौन वैष्णव देखने को ही मैं
तो वो लोग यहाँ अमृत से मुक्ति को मान
वो को हमारे प्रति स्नेह हो ये प्रेम साधारण भक्ति से ऐसा ही होगा जिसके सब नहीं हो जाएगी और सब सुविधा हो जाएगी तो ये संसार से विमुक्ति विशेष रूप से मुक्ति ये साधारण भक्ति का नामाभास का फल है नामाभास से कोई वैकुंठ में नहीं जा सकता अभी कोई प्रश्न कर रहे थे स्कूल वाले लोग, ये लिखाया हरिनाम चिंतामणि में एक आदमी ने व्याख्या कर ये नमा भाग से एक्शन बैठने नहीं मिला, ये गलत है। नमा भाग से कभी भी बैठ नहीं होता, उससे मुक्ति हो। मुक्ति माने क्या? जन्म मरण का ये जो भाग है यह सब गलत है। जन्म मरण में संसारिक दुख सुख मान अपमान इत्यादि इसमें जो जीव रहे हम लोग इस माया से होने के बाद ये शरीर में रहते यदि हो जाएगा सिद्धि नहीं सब हो जाएगा। अजामिल का यही हुआ, उसने नवा भाग किया, अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया और इसका इतना फल है वो नहीं जानता था, किंतु गुरु अपने गुरु जी से वो जान, उनके गुरु कौन है उन्होंने इसके पहले कभी किसी से इस विषय में नहीं सुना। अच्छा, उन्हीं के वचनों में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और उन बातों को सब से समझा। क्यों? उनके सामर्थ्य को देखा, वास्तव उन्होंने हमारी मुक्ति करा दी, जमदूतों को भगा दिया और उसमें हमारी रक्षा कर दी। अब इनसे बढ़कर के कौन होगा? इसी प्रकार से गुरु में किसी गुरु को आदमी देखता है तब उसकी श्रद्धा नहीं तो बोलता है सवानंद। देखा जो उनको दृढ़ श्रद्धा हो गई, देखा जी हमारी मृत्यु से भी रक्षा कर दी और जन कदितों को भरा दिया, बस उनके वचनों में दृढ़ विश्वास उनका, बस गुरु कर्म हो गया, उनको अपना मान लिया, मन करके फिर जो बच गया तो वहां से हट गया और सब फिर भक्ति का अनुशीलन किया। नाम करते 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 नवा भाग से फिर धीरे 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 शुद्ध होने से धीरे धीरे उसकी श्रद्धा तक भावावस्था में पहुंची और उसके बाद में प्रेम होगा तो ही वैकुंठ में जाएगा, बिना प्रेम के कोई नहीं जाएगा। ये शुद्ध नाम के साथ इसलिए शुद्ध नाम हुआ और तब इसके बाद में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम के द्वारा तक फिर बैठ।
यानी साधु को चाहे कितने बार ही जन्म लेना पड़े, सिद्धि जब तक नमक तब तक आएंगे
आना होगा, वो नमक भाग से भी आना होगा, भले ही मुक्त हो गया स्वरूप में, किन्तु वस्तु सिद्धि की नहीं, उसकी तो वस्तु सिद्धि का भी विचार है। ये बैकुंठ के दूर आए और बैठा करके विमान में और बैकुंठ ले गए और उसको सारूप मुक्ति दी, चतुर्भुज होकर के गया है, उसमें सालों से भी उत्साह हो गया है और प्रेम सेवा उत्तरा हुआ कि क्या हुआ इसका उल्लेख, प्रेम सेवा उत्तरा का होने के लिए और कुछ और के लिए प्रेम सेवा उत्तरा नहीं हुआ क्यों? इसके लक्षण से मालूम होगा उन्होंने कोई रसिक वैष्णव का हनुमान इत्यादि का किसी का संग नहीं किया या नारद जी का, यदि नारद जी का संग हो गया होता तो कैसे हो सकता? अच्छा, इसलिए भगवान की जो भक्ति है, यहाँ पर भक्ति माने साधन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साधु सेवनम, अथवा यहाँ पर साधारण रूप में वैदिक भक्ति के लिए यहाँ पर वह भक्ति साधन वैदिक भक्ति, उसके द्वारा ये अमृत फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा भक्ति के द्वारा, किंतु वह तुम लोगों की तो हमारे प्रति प्रेम है, स्नेह ममता युक्त प्रगाढ़ प्रेम है। ये कैसा है? होती नाम मदापन हमारे से तुम्हारी प्राप्ति करा देगा, मिलन करा देगा, यह प्रेम ये गोपियों को बड़ी प्रसन्नता। किंतु कृष्ण वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, कृष्ण ने उदाहरण दे दिया कि जैसे वायु सर्वत्र ये शरीर में नहीं, आग भी सर्वत्र है किंतु मथन करने से तत्व नहीं होता, ऐसे मैं सबके अंदर में हूं और धन इत्यादि के द्वारा नहीं बताया जाता। बस गोपियों को रोष हो गया, तब उन्होंने आहू के नमी नाम पदार्थ जोगेश्वर आई होती संसार को पतितो करणावलंबम ये हम मनस किया इनका ये बतला रहे हैं गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ प्रथम बसता ये तपस्या इसमें स्नेह को लिया है भगवान भगवत प्राप्ति के लिए स्नेह अत्यंत आवश्यक ममत्व युक्त अत्यंत अधिक ममत्व युक्त जो स्नेह है जो भक्त पहले द्रवित हो जाए और उनको देकर के कृष्ण भी स्वीकृत बिना द्रवता के स्नेह वो मिलते नहीं प्रेम से भी लुकास्थिति करेंगे लुकास्थिति रहेगी किंतु स्नेह क्या हुआ ताकि रात में भी यही हुआ गोपियों का कि सद्रवित हो गया आगे और उनको देकर के कुछ संद्रवित होकर के मैं मान काम बोझा जब पहले हम आलोचना कर रहे हैं बतला रहे हैं प्रसंग तक फिर अब आ रहे हैं कृष्ण प्रतिज्ञा दीर्घ स्तर बता ले आज ये जैसे भले कृष्ण तारे भले कैसे कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा कैसी है दृढ़ वो टलने वाली नहीं है जो सब काल आती सब काल मैंने केवल कलयुग के लिए ही नहीं द्वापर युग के लिए ही नहीं त्रेता युग और सत्य युग और इससे अति कालातीत भी कालातीत भी उस सब समय के लिए हमारी एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कृष्ण ऐसा कर हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा वो कभी चल नहीं सकती ये जैसे भजन जो जैसा कृष्ण को भजन करते हैं कृष्ण सारे भजे कैसे कृष्ण उसको उसी रूप में चले भजन मैंने यहाँ जैसे भक्त जी भावना से उनका भजन कर रहा है कृष्ण भी उसके उस भजन के भाव को पूरा कर ये भजने का अर्थ ये भी है कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियां घर का काम सब छोड़ करके बंसी की ध्वनि सुन करके आई और कृष्ण उनको कैसे भजन किया जिस अभिलाषा से वो आई थी उस अभिलाषा को पूर्ण किया इसका तात्पर्य हुआ ये जैसे भजे कृष्ण तारे को एक प्रेम अनुरूप न कार्य भविष्य अतव रेणी भय बहे भागवत इसलिए कहा ये जथांग माम प्रपद्यंत आगे बतलाए ये जथांग माम प्रपद्यंते ताम कथयो भजन जो एक आना भजन करेगा एक आना ही उसका भजन करेगा वो चीज जो सोलह आने में से चार आना भजन करेगा तो वो चार आना यदि कपटता पूर्वक कोई भजन करता है तो कृष्ण कपटियों के भी भूखते हैं कपट शिरोमणि कोई अर्थ के लिए करता है तो उनके सामने गणेश जैसा प्रकट होकर के उनको दे कोई विवाहित त्यागी चाहेगा तो उनके सामने में वो दुर्गा होकर के ये सब
जो जो जान जानते हैं श्रद्धेय अर्चित
जो जो मैंने जैसा जैसा करता है उतना और उसी रूप में कृष्ण वैसे ही बन करके और वैसे ही लोगों में प्रेरणा करके देवताओं में और उनकी इच्छा को कभी स्वयं करते हैं कभी लोगों के माध्यम से कराते हैं एक ही बात हुई मैंने गया किसी प्रतिनिधि को भेज दिया तो वैसे कृष्ण अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी इच्छा को वो पूर्ण करा जब कोई पितरों की पूजा करता है तो क्या करते हैं पितृलोक में उनको पहुंचाते देवता देवान हमारा जो उपासना जो देवताओं की उपासना करता है उनको देवलोक से पहुंचा करके देवताओं से मिला करके देवताओं के समान ऐश्वर्य इत्यादि की बात जो पितृयों की सेवा करता है भजन करता है उनको पितृ लोक में उनको जो पतिव्रता है उनको पतिव्रता उसमें स्थित कर उनको उनका सुख किंतु हमारा जो भजन करेगा वो हमारे पास ही
जाएगा।
हमारा जो भजन करने वाला वो हमारे पास है। किंतु और एक साथ ही साथ में बात कह दी, और जितने हैं वो सब आप सब लोग भ्रमण करते रहेंगे। आप ब्रह्म भुवाना लोक ब्रह्मा तक इस लोक में उस लोक में आते जाकर जन्म मरण के चक्कर में। किंतु हमारा यदि जो उपासना करता हमारे लोक में चला गया उनका फिर कभी भी पतन नहीं। मानो पे तुम कौन से पुनर्जन्म और ये क्या है जब हम वहां जाकर कभी नहीं लौट वहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होता और सब जगह से लौट आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण तुम्हें किस रूप में किस रूप में कभी जैसे तैसे सबको इच्छा को पूर्ण करा दे। जैसा जो भजन करेगा बस यदि कोई कह दिया प्रभु मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ आप में विशेष निराकार आप में कोई आकार नहीं आप उसमें मैं भी जन्म ये अच्छी बात है तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं पर जैसे आप तुम समझ लो विष्णु का ही नहीं क्या ही नहीं इसी कारण है माने उसके चेतनता तो को कुछ समय उसमें हरण कर देते हैं। वो समझता है कुछ भी नहीं समझता मैं हूँ या नहीं इसी को कहते हैं ब्रह्मचारी। भगवान हजार चेष्टा करें तभी भक्तों भक्त ये नहीं रहेगा और संसार के जितने लोग हैं यही चाहते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों में भी तिलक माला हम लोगों की है वैष्णव है दीक्षा भी ले लिया खूब पाक के साथ एक 2000 रुपया दीक्षा ने खर्च किया बहुत लंबा हवन करवाया लंबा जब जो पवित्र लिया और पूछा जे भाई जन करते करते अंत में हम लोग भगवान में मिल जाएंगे तो हमारा इसलिए सुपर्द कर समझे कोई तत्व ज्ञान नहीं। तो जो लोग हरिनाम तो करते हैं और वैष्णव का तिलक धारण भी करते हैं सब कुछ करते हैं और हरि कथा नहीं सुनेंगे वैष्णव के उनकी यही दुर्गति है। हो सकता है कि मायावादी न बन जाए कर्मी न बन जाए ज्ञानी न बन जाए। इसलिए हरि कथा को सुन करके फिर शुद्ध नाम जो करेगा शुद्ध रूप में हरि कथा सुनेगा उसी को प्रेम होगा और वही वहां पर जाएगा अन्यथा कोई नहीं जाएगा। बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए भगवान का ये नियम है प्रतिज्ञा है हमारा जैसा जो भजन करता है मेरे पास में राम कांटा है कि धर्म कांटा राम कांटा भी कहते हैं धर्म कांटा कि धर्म का राम कांटा भजन कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। जो जैसा भजन करेगा कपट से रह करके कर्मनिष्ठा सकाम निष्काम भक्ति युक्त प्रेमा भक्ति युक्त ब्रज के भाव को लेकर के उसका सबका वजन वो कर लेते और वजन के परिमाण ही में उसको वो चीज दे देते किसी कार्य में नहीं रहते
डी नहीं मारेंगे
वही तो पकड़ता है मैं तुम्हारे साथ बड़ी कृपा थी बहुत बड़ी भारी कृपा और वहां पर दंडी मार दी उन्होंने वंचित कर दिया उसको ठग भी है पूरे यदि तुम्हारा हृदय ठग है तो भी ठग गए वही कहते किंतु एक जगह वो ठग जाकर नहीं देता है अनुरूप फल नहीं देता वो बैकुंठ तक वजन करके सबको ठीक कर देते हैं द्वारका तक में भी सबको ठीक कर देंगे सखा लोगों को भी उचित उनके प्रेम का जो उसके प्रतिदान है उसको भी सखा को सखा अपने कंधे पर कृष्ण को ले जा रहा है तो कृष्ण क्या करें अब तुम थक गया तुम हमारे कंधे पर बैठ लो वो जितना ले गया था उसे एक इतना एक हाथ और आगे पहुंचा है उसका ऋण शोधन करते मैया का भी ऋण शोधन कर देंगे किंतु एक जगह लाचार हो जाता कहां बस इसी जो अभी प्रेम को बतला था यही प्रेम अनुरूप ना पाए सभी से अतरी है पहे भाव इसीलिए श्रीमद भागवत में कहा गया न पा रहे हम निर्भर व्यसन न पा रहे मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सका और न सकता हूँ न सकूंगा न चुकाया न चुका सकता हूँ वर्तमान में भी और भविष्य में भी नहीं चुका सकता तुम लोगों का इसलिए
खूब सेवा करते हैं उनके बाद वही करे और बुद्धि को नाम लेते हैं कहाँ पे है फिर बजाओ अभी
तो वहाँ पर था ने बांस लगाया नीचे तक बाहर ही नहीं मिल गया उस प्रेम का गोपियों के प्रेम का स्थान मिल जाए तो जब स्थान मिलता था तो उसमें बराबर कर देते और उनका पलरा और ये भी है ना तो वहाँ पर भाग न सहने का कारण वहाँ पर टूट जाता है इसलिए वजन ठीक से नहीं कर पाते इसलिए वो बराबर तक से भी नहीं पाते तो कहते हैं क्यों कहते इसलिए कहेंगे निर्मध्य तुम लोगों का हमारे प्रति जो मिलन है तुमने हमें जो प्राप्त किया तुम्हारा जो हमसे मिलन है या तुम हमको जो प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है यह कैसा है निर्वध्य निर्वध्य किसको कहते हैं जिसमें तनिक भी कोई स्पॉट न हो कोई भी दाग न कोई भी कमी न पूर्ण रूप से जैसे एक सोना को एक बार आग में जला दिया गया तो हो सकता है कि इसमें कुछ निर्मलता में कमी हो कोई स्पॉट रह गया और उसको लक्ष्मण यदि हो किया गया हो लक्ष्मण मैंने क्या लुक्वाद उसे आग में सफाया निकाला फिर सफाया फिर अब कोई भी संभावना नहीं इस तरह से हमारा तुम्हारा जो प्रेम परस्पर का मिलन है ऐसा निर्भर अर्थात परम विश्व
लक्ष्मण मैंने एक लाख बार
जिला होता नहीं कब इस प्रकार से हमारा तुम्हारा मिलन है अच्छा मिलन मैंने यहाँ क्या मिलन मैंने क्या मिलन में दोनों का मिलना नहीं जैसे रात में मिलन हुआ हमारे गोस्वामी ने उनका जो वर्णन किया प्रेम से जब मिलते हैं विलास युक्त उन दोनों का मिलन ये मतलब है मिलन ये मान लिया कि कृष्ण ने बंसी वादन किया गोपियों ने घर के अपने पति से ससुर से सास से ये पूछ करके आई कि मैं कृष्ण के यहाँ जा रही हूँ किसी से पूछा नहीं चुपचाप चली आई समय नहीं रहता तो वो छिप करके आए अच्छा जो छिप करके आया जाता है इसमें कोई ना कहीं दोष है कोई आदमी कोई व्यक्ति काम करता है छिप करके इसका मतलब क्या है कुछ न कुछ जरूर दाल में काला है तो ये सब जितनी की जितनी गोपियां आई छिप करके आई तो कुछ गड़बड़ी है अरे अपने पतियों को छोड़ना इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है ये महापाप ये सबसे बड़ा यहाँ तक अस्वर्गम स्वर्ग से भी नीचे चुप करने वाला
और जसस्करण
और जसस्करण
और कीर्ति करण
ये सब चीजें तो ये तो वो कहे नहीं ये मत समझो निरवध्य कैसा है जिनके आंखों में दाग है अंधे हैं वो लोग ऐसा मुझसे बढ़कर क्या और पृथ्वी में किसी की आंख नहीं है मैं दुख भविष्य और वर्तमान सब कुछ जान जितना ज्ञान का स्रोत है वो सब हमसे निकला धर्म भी हमारे से निकला है इसलिए कहते हैं तुम्हारा जो हमारे प्रति जो मिलन है यह अत्यंत विशुद्ध है इसमें कहीं भी कोई दाग नहीं पूर्ण रूप से स्वच्छ है इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं क्यों हमारे गोस्वामी रूप बतलाते हैं। कृष्ण हमसे प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद में कहा कि तुम कुछ क्या चाहते हो, किस लिए ये हमारी सेवा की? तो हम कहते हैं ये जान करके उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, ये तो अर्णी हो गए। माने किसी की इच्छा को पूर्ण कर देना ही पूर्ण होना होगा। गोपियों ने कृष्ण को प्रसन्न किया, कैसे प्रसन्न किया? लुप्छिप करके आए, एक तरह से संसार वर्णाश्रम धर्म के लिए ये महत पाप करके उनके पास में आए, जितने बंधन थे सब बंधनों को तोड़ दिया। एक बड़ी भारी नदी थी, बड़ी भारी नदी अथाह पानी वाली, अथाह किनार, इस मर्यादा के नदी को भी पालना में गुरुजनों का जो वाक्य लंघन, ये बेड़ी हथकड़ी को भी उन्होंने एकदम तोड़ दिया। और कृष्ण ने पूछा, मैं क्या तुम्हारी इच्छा को चुन, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो गोपियों ने कहा, आपकी कृपया सेवा हम करें। अरे अपने लिए कुछ मांगो तो हम अपने लिए ही मांगते हैं कि आपकी हमको सेवा दी, इसके हफ्ते तो दूसरा कोई बार नहीं मांग सकती है। तो फिर कृष्ण और भी ऋणी हो जाएंगे, जब ये बर दे दिया तो और ऋणी बन गए, इस तरह से वो ऋणी रहेंगे। दूसरी बात, गोपियों ने यदि कहा, अच्छा आप यदि प्रसन्न हैं तो एक बात की, जैसे हम तन मन धन से और सब कुछ को छोड़ करके, विश्व को छोड़ करके, पति पुत्र और सब छोड़कर केवल मात्र एक निष्ठा से हम आपकी सेवा कर रही हैं, कर रही हैं, उसी तरह से आप भी एक निष्ठ होकर के हमारे प्रति सही करते हैं, हमारी मनुष्य कृष्ण करेंगे। वहां तो करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों ने यही एक बात, आप सबको छोड़ करके केवल हमारा कर, ऐसा कहती नहीं है वो, जब भी कर दें कह दें वो जानती है, ये कृष्ण नहीं कह सकते, इसलिए वो कहती नहीं है। इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ है। उन गोपियों की तो बात क्या, इस जगत में जो साधक भक्त हैं, कोई भी साधक भक्त है, कृष्ण राज कर रहे हैं एकदम अविनिष्ठ होकर, अथवा उस राष्ट्र को भी छोड़ करके, सब को छोड़ करके राधा जी का केश संचालन कर रहे हैं श्रृंगार भट में, अत्यंत विविष्ट होकर। उस समय जगत का कोई भक्त कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, भजन कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना को कौन सुनेगा? कृष्ण स्वयं सुनेंगे या अपना प्रतिनिधि भेज देंगे? क्या करेंगे? वो प्रतिनिधि नहीं मानता है, वो जो सेवक जो भजन कराए साधक भजन तो मिलता, तो क्या करेंगे वो उनको ही सुनना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ है, कदापि एकनिष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए गोपियां जैसे सब कुछ छोड़ करके, देश की आसक्ति भी छोड़ दिया, अपने ममो और मैं और मोनो सब कुछ छोड़ दिया और एक निष्ठ कृष्ण में हो गई, ऐसे कृष्ण पदार्थ नहीं था। कृष्ण के बंसी बादल के सामने जैसे सब गोपियां दौड़ गई और सब गोपियां एक ही साथ में कृष्ण को पुकारे, तो वो क्या करेंगे? एक के पास में जाएंगे ना सबके पास में जाएंगे, उनको सबके पास में जाएंगे। इसलिए बहुत निष्ठ है, इसलिए ऐसा वो भजन कर ही नहीं सकता, हरा ऐसी समझ में। इसलिए साधु तुम्हारा यह कार्य है वो साधु है, किस लिए साधु है? पतियों का तो नहीं जारी भी तुम्हारे लिए साधु है, क्यों? हमने ये कर रखा है सर्व धर्मानुसार, सब धर्म को छोड़कर के एकांत में हमारी स्वयं, इसलिए यह अधर्म नहीं हुआ। मैं ही एकमात्र जगत का परम पति हूँ, परम पिता हूँ, परम माता हूँ, सब कुछ मैं ही, विशेष करके मैं ही परम पति माने सौ पालन पोषण करने वाला, सौ प्राण करने वाला मैं ही, मुझसे अतिरिक्त और कोई नहीं, अंतिम सर्वोच्च। इसलिए जगत का कोई भी व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है तो उसको पाप नहीं लगता। सभी मनुष्य जितने भी जीव हैं वो चार ऋण से आबद्ध हैं, पांच ऋण। वो ऋण क्या है? वो क्या है? देवर्ती भूतात्व ऋणान नयन ऋणान नयन ऋणी च राजन जर्वत्मन तो मुकुंद परिहत्य कर्तुम नैन देवर्ति देव ऋण ऋषि ऋण भूतरी
आपकरी
आपकरी
राजा
और माता पिता ऋण
राजा
हे राजन, वो हे राजन है,
देव ऋण भूत ऋण पितृ ऋण राज ऋण
देव ऋषि देव देवर्ती आप मैंने क्या माता पिता भाई आत्मीय सज्जन इसके अंदर में आए, और देव ऋण मैंने देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण क्या है?
पानी बरसते हैं, कोई ताप देते हैं,
रक्षा के लिए वो सब हवा इत्यादि सबका देते हैं, इसी हमारा कोई देखे और ना देखे देवताओं का, और इसके कारण ये क्या है? अब हम लोग कभी ऋषि के अंदर में नाग है ऋषि, और सब संसारी लोगों के लिए ये संहिताएं हैं, मनु सारी उसके द्वारा हमारा ये सब चलता है, समाज उनके ऋण है, और हम लोगों के लिए नाग है, व्यास है, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, और रुद्र गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सुना चंद्रवती ठाकुर, ये हमारे सब ऋषि, इन लोगों का ऋषि उनकार है, हमारे गुरु परम ऋषि है, ये सब भाव रखें, देव ऋण ऋषि ऋण और भूत ऋण भूत ऋण भूत ऋण माने
प्राणी।
एक गाय दूध नहीं देगी ना फिर क्या होगा? एक बैल खेत नहीं जोतेगा,
खेती नहीं
हाँ, आजकल ट्रैक्टर नया निकला है, जहाँ दूध देने के बाद में जब ये सभ्यता एकदम सिविलाइज एकदम सब नष्ट हो जाएगी फिर देख लेंगे क्या होगा। ट्रैक्टर की जो जानने वाले महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी थे ना, धनुष बाण चलाते थे और आग लग जाती थी, बर्ता हो जाती थी, सांप की बर्ता होने लगती थी, और क्या, अब वो कहाँ विद्या है,
लुप्त हो गया।
जब मान लिया कि ऐसे ही ट्रैक्टर बनाने वाला ये सब लोग एक महायुद्ध में एक एटम बम में सब नष्ट हो जाए, फिर ट्रैक्टर कहाँ रहेगा? फिर वही बैल वाली दुनिया, फिर घोड़े पर चढ़ करके लोग लड़ेंगे, न मल्ल युद्ध करेंगे, गदा से चलेंगे, वो सब चीजें, ये सब नष्ट और भ्रष्ट होती रहती है, किंतु हम लोगों की ये बात ये सब पता है, ये सब समय ठीक है, अभी कभी तूफान आ गया और कभी कुछ तूफान, क्या
करेगा
एक मेरा जन्म हुआ, छोटी मेरी बहन छोटी सी, अभी वो खुद भी नहीं चलना चाहती, तू भी स्नेह करके गोदी में ले लेती, चेता भले ही लेकर के गोदी में वो दोनों गिर जाए कोई बात नहीं, फिर वो में भी लग जाएगी, किंतु गोदी में लेकर के स्नेह करना। इसी तरह से घर के जितने लोग हैं ना, कभी उसके गोदी में, कभी उसके गोदी में, कभी उसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में, कोई कोई लाल प्यार कर रहा है, कोई कुछ पूछा कर रहा है, इस तरह से पिता माता भाई बंधु जितने हैं सभी संबंधी सभी का हिस्सा है हमारे, और दूसरे हैं राजा को राजा न रहे अभी तो मालूम नहीं पड़ता है, यदि अच्छी तरह से शासन हो तो एक दिन में महिलाओं का चलना भी रास्ता में बंद हो जाएगा और अच्छे लोगों को साधु संतों को चलना बंद हो जाएगा। कोई निकल नहीं सकते अच्छे आदमी, कुछ लोगों की भरमार हो जाए, जैसे कि वो राजा के समय या अभी भी कभी कभी हो रहा है। सब सज्जन लोग भाग छोड़ करके भाग गए, कोई सज्जन रही नहीं सकते, कुछ लोग और वो लोग भी लड़े में शराब खाएंगे और ऐसे कर, इसलिए राजा का इस तरह से हमारे ऋण है। देव का ऋण कैसे चुकेगा? यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उनका। और ऋषियों का ऋण कैसे चुके? दूसरे लोगों को हम वही शिक्षा जो उनसे पाए वही सब शिक्षा देंगे, और जो नहीं शिक्षा देगा उनका ऋण रह जाएगा। हमारी परंपरा में ऐसी बात नहीं है, सीखो और दूसरों को भी। प्रधान महाराज जी भी इसी परंपरा में आए थे, हम सीख लेंगे और किसी को देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना दोगे उतना ही ये बढ़ेगा, इसलिए इस ज्ञान को स्वयं उसमें प्रतिष्ठित होकर के दूसरों को भी देना उचित है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञात गुरु भैया तारोई, गुरु बन करके जिसको देखो तुम कहना जे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और उसको कहने ना जैसे वो भी दूसरे करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं अभी हमने जो बताया जो हरे कृष्ण कहना, सब कृष्ण लोगों को आप सभी लोग कहें, आप प्रतिदिन अच्छे अच्छे आदमियों को सज्जनों को यहाँ पर लाएंगे जो कि सबको सुने समझे और करें। नहीं तो फिर तो अपने संस्थाएं बनाएंगे और धीरे धीरे ये सब चीजें, इसलिए गुरु कार्य ऐसे है। और भूत माने प्राणी, जैसे तुमको जन्म दिया और पालन पोषण किया, इस प्रकार से प्रजा उत्पन्न करके उनका पालन पोषण और उसको सब प्रकार से युद्ध बना करके सब जाओ। और दूसरा होता है क्या?
ये स्थूल
ये स्थूल। और सूक्ष्म रूप में क्या हुआ?
भगवान का भजन करे उन लोगों का युद्ध,
जैसे तुमने भगवान का भजन बहन करना सीखा उसी प्रकार से तुम्हारे भजन के प्रभाव से उनका उद्धार पूर्वजों का। इस तरह से ये और क्या राजाओं का उपकार वो तो उसी में आता। इसी तरह से सब ऋणों से यदि कोई भगवान का भजन करता है तो इन सब ऋणों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप भगवान चुका लेते हैं। कैसे चुका लेते हैं? जैसे मैंने किसी को 1000 रुपया दिया, 1000 एक उदाहरण के द्वारा है। हमारे मुनि महाराज वो गृहस्थ का नाम था सनातन महासनातन दत्ताधिकारी, उनके यहाँ कपड़े का कारखाना था, उसमें बहुत से नौकर लोग थे जो काम करते थे कपड़े बुनते थे। उनमें एक थे उनका नाम था पूनम, वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके यहाँ कपड़े बुनते थे और उनको ये महीना देते थे। तो इन्होंने इनकी स्थिति खराब थी इसलिए उनसे 5000 रुपया ले लिया और वो काम कर रहे थे, धीरे धीरे चुकाए। तो वो 5000 रुपया देने में चुकने में कम से कम कभी 5-7 वर्ष लग जाए। एक बार गुरु जी हम लोगों के साथ में ही सनातन प्रभु जी के घर में, जब घर में गए तो हरिकथा 4-5 दिन हुई तो उन्होंने पूर्णानंद जी से मैं काजन धारा मेरी भजन करने की बड़ी इच्छा है, मैं भी इन लोगों के समान में ब्रह्मचारी जैसे भजन कर रहे हैं, मैं भी अब दत्ताधिकारी बनकर के आपकी सेवा करूं, बाम प्रसव स्वावलंबन कर रहे मेरी इसलिए मैं भजन कर। चलो अभी अपनी स्त्री से पूछ लो, हमारी स्त्री राजी तब फिर क्यों नहीं चलते? मैंने 5000 रुपया इनका ले लिया और जब तक नहीं चुकता तब तक मैं इसके बंधन में हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ गुरु जी ने इनको बुलाया सनातन प्रभु, सनातन प्रभु आपके पास में आप नहीं है 5000 रुपया आपसे लिया आया था, तो ये तो भजन करना चाहते हैं और 5000 रुपया मैं आपको इसके बदले में दे दूंगा। जो महाराज ये चाहता है मैं तो आपका कोटी रुपये का ऋण, वो कहते आपने हमको परमार्थ में लाया, मैं जन्म जन्म का आपका ऋण, तो ये 5000 रुपया हमारा यदि इसमें चुक जाता है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, इसलिए मैं वो 5000 रुपया हम आपसे पा गया, आप इनको ले जाइए। काफी साथ आए और एक दो वर्ष में फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास का तरफ करके
पूर्णानंद
फिर उनका नाम हो गया, क्या नाम हुआ, परमार्थी महाराज, परमार्थी महाराज नाम। भगवान के हम सभी ऋणी है ना, अब यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं दूसरे क्या ऋणी है, तो वो भी तो भगवान के ऋणी है, इसलिए वो सब कुछ जाता है। ये इतना ज्ञान भी होना बिना साधु संतों के समझ में नहीं, इसलिए कहते हैं ये भगवान भी ऋणी है किनके, केवल मात्र गोपियों के, सब गोपियों के ऋणी है, किंतु और किसी के ऋणी नहीं है, क्यों किसी कहते हैं सब साधु कृत्यम, आप लोग साधु आपके अंदर में कोई वासना कामना नहीं है, सब समय निराकुश चाहती है, ये आपका साधु कृत्य है, आप परम उदार है, आप उस उदारता से ही हमारे इस ऋण से पूर्ण, मैं जानता हूं आप हमारे दोषों को, हमारे त्रुटियों को और कमियों को जो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए आप सब मैं हमको छूट देती हूँ, अन्यथा मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, यदि आप लोग ऋण कर देंगे तो भी मैं ऋण नहीं ली, ये तो और भी मैं दब जाऊंगा। एक आदमी कोई ऐसा काम किया और किसी ने उसको क्षमा कर दिया, तो क्षमा करने वाले का कितना बड़ा भारी ऋण उस पर और चढ़ जाता, उसी प्रकार से गोपियों के यहाँ जब कृष्ण ने ये सोचा ओहो मैं इनका ऋणी हूं और कह रहे हैं माँ भजन दुर्जर द्रेह श्रृंखला, हमें भजन करने की जा माँ भजन, तुम लोगों ने जो हमारे प्रति अपने दुर्जर द्रेह श्रृंखलाओं को अभी जो पीछे बतलाया उन श्रृंखलाओं को तोड़ तोड़ कर मर्यादा के समुद्र को भी लांग कर संविष्ट मैंने छेदन कर, उनको छेदन कर, हमारे पास में जो आई प्रति जातु मैंने तुम लोगों का ये जो ऋण हमारे प्रति हुआ उसका मैं ऋण अभी भी लाख देवताओं के जन्म को भी पा करके मैं कभी भी ऋण कभी भी नहीं, गोपियां तीन और एकदम काम को हम लोग तो ऐसी हो नहीं सकती, जैसे ही ये आज अपने मुख से ऐसा कहा मैं तुम्हारे कोटि जन्मों में ऋण नहीं चुका, न होना सहज बात है किसी के लिए, अब हम लोग उनकी ऋण बन गई इस वाक्य के द्वारा कृष्ण ने हमको खरीद लिया, इसलिए प्रति
उनका कि ये तो कृष्ण ने ठगबाजी करके हम लोग तो बचाना चाहते हैं तो क्या करें,
जब पीछे से जब सिद्धि आई होगी तब फिर कृष्ण ने गोपियां एकदम अल्प हो गई और किस प्रकार, क्योंकि इसी के बाद में फिर रात आग हो गया, इसी के बाद महाराज ने तो अभी तक रात नहीं हुआ था, फिर गोपियां प्रसन्न हो गई, कोशिश जताई इतना होना हम लोगों के लिए भी सहज नहीं है, इतना नीचे पहुंच जाए, ये इतनी इतनी उदारता है, आज उस उदारता के कारण हम पुनः नीचे नहीं बढ़ते, इसलिए फिर मैं तो कृष्ण किसी प्रकार से समझा नहीं सकते थे गोपियों को, ये इन्होंने सबसे बड़ा जो क्या किसी के वशीभूत होकर के दीनता पूर्वक इससे बढ़कर के कोई युक्ति किसी को शासन के द्वारा आप नहीं जिता सकते, नहीं झुका जाता हम तुम्हें नहीं, किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया। यहाँ प्रकृति में समझाया, ये बतलाया हम सब प्रकार से अपार, तुम्हारा ऋण कहानी खत्म नहीं, मैं बहुत दीन ही सबसे छोटा बस गोपनीय यही संकट। इसलिए कृष्ण विदर्भ होता है, विदर्भ समझ क्या है, बात चतुर नहीं तो आपकी चाहिए रस्ती के बाद। उन्होंने देखा भाई रात तो होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने आगे बतलाया जगति सौंदर्य कृष्ण माधुर्य धूर्य, कृष्ण माधुर्य धूर्य ब्रजदेवी संगीता पड़ी। इसके बाद में धीरे धीरे रात आरंभ हुआ मंडलाकार में, कृष्ण कैसे हुए एक गोपी के बीच में एक भी पड़े, एक तो पहले राधा जी के साथ में एक रहे और सब गोपियों के पास भी वो दिखाई पड़े दो स्वरूप, एक राधा के बीच में राधा जी के पास बीच में राधा जी बीच में थी और सब गोपियां मंडलाकार बीच में उनके साथ और सब मंडलाकार में गोपियों के साथ में एक एक गोपी मध्य 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 मैंने क्या
दो गोपी के निकले
कृष्ण के लिए कर रहे हैं गयोर मध्य
गोपी मध्य
दूसरा गोपी ना गयोर गयोर मैंने दो बार गोयर गोप
दो गोपी के बीच में कृष्ण दो कृष्ण के बीच में गोपी
दो गोपी एक तरफ में दो गोपी एक तरफ में बीच में आपको डर होगा कैसे देखो दो गोपी है इधर में कृष्ण है इधर में उधर से वाली गोपी इधर वाली गोपी और फिर इधर वाली गोपी उधर तो दो हुआ इधर और फिर उधर में नहीं समझा
कृष्ण के दो गोपी
दो तरफ से गोपी को पकड़े हैं कृष्ण और उधर वाले कृष्ण क्या किए हैं दो को उधर तक पकड़े हैं तो बीच में दो हुआ नहीं समझो दो हुआ अरे तो कृष्ण एक इधर से पकड़ा इधर तब फिर उसको भी उधर से पकड़ा तो एक गोपी को दो बार कृष्ण पकड़ा है दोनों हाथ उधर वाले हाथ से ऊपर कौन सा ठीक है नहीं आया समझ
में एक गोपी के अंदर कृष्ण हाथ से दूर एक गोपी दूजा गोपी बात करते कृष्ण
मैंने यही तुम लोगों से पूछे ये कौन सा ठीक है एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है या दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है अरे ब्रह्मा इस चीज को निर्णय नहीं कर सके आ रहा हूँ आप हम लोग बैठे
कोई रूप समझ नहीं है ना एक बार ऐसे नृत्य किया कि 300 करोड़ गोपियाँ एक साथ कहें कि ऐसे नृत्य कला सीखा है 300 करोड़ गोपियों के बीच में कैसे चक्कर का समझ में नहीं आ रहा
यही तुम भगवान का
और फिर
लिखते सब तो ठीक हो जाता ये दो गोपी उनके बीच में थी किंतु द्वयो द्वयो दो दो गोपी और एक
फिर इसके बाद में कुंजलीला ने एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया और पृथक पृथक कुंजल दिखाया
दोनों भी हो सकता है अलग के आचार्य ने कहा है ऐसे ढंग से उन्होंने कला कौशल से किया है जो ठीक ऐसे ही मालूम और ये कह रहे हैं तत्रापि सुशुभे साधीर भगवान देवकी सुत मध्य मणिनांग है मानांग महामर्कतो तत्राति सुशुभे कौन सी शुभित किया तत्राति मैंने कृष्ण बड़े सुंदर हैं अभी कह रहे हैं यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्य रसूर्य कृष्ण का जो माधुर्य है उसका गुरी क्या है धुरी किसको कहते हैं, चक्का किस पर चीज पर घूमता है, धुरी अपने धुरी पर घूमती है ना? कोई चीज के लिए धुरी नहीं रहेगी तो चक्का इधर उधर चला जाएगा, धुरी हम तो धुरी क्या है, यह कृष्ण माधुरी का उनका सौंदर्य ही, और सौंदर्य किसको कहते हैं, 16 चीजों से युक्त होकर के तब ये सौंदर्य बनता है। कृष्ण का जीव ललित्व और वो सब जो गुण हैं, उनकी कलाएं हैं, उनका विदग्धपन है, उनके वो सब ये सब यदि गुण न रहे तो ये सौंदर्य भी नहीं है। उसमें आभरण भी है, आभूषण भी है, मंडन भी है, ये सब अलग अलग सब बतलाए गए, तो ये सब मिलकर के सौंदर्य है। ये सौंदर्य ही कृष्ण का सबको आकर्षण करने वाला है, और यही माधुरी कृष्ण की समस्त माधुरी माओं का माधुरी है। इसी तरह से आकर्षण करते हैं, और इनका यह रूप समस्त रसों में उसके अनुकूल ही ये होता है, एक ही रूप में नहीं, विभिन्न रूपों में, पांच रूपों में पांच रस होता है। कृष्ण एक जैसा उनका होगा आश्रय ऐसा ही उनका होगा। सत्रापि कृष्ण अत्यंत सुंदर है किंतु प्रतिदेवी संगीता बारे माधुर्य, कृष्ण का माधुर्य और सौंदर्य और वैदर्भ नित्य की कुशलता, कृष्ण की संपूर्ण भगवत्ता का सार, ये सब कब बढ़ता है,
गोपी
संतरस में स्थिर रहता है, दशरस में कुछ बढ़ता है, सखरस में और बढ़ता है, पाचल्य में कुछ और बढ़ जाता है, और गोपियों के संग में पूर्ण रूप में बढ़ जाता है। अभी कुछ बढ़ने का अवकाश है, अभी तक नहीं बतलाया, बतलाएंगे थी इसलिए गोपियों के साथ में परिपूर्ण रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं सप्तराती, सप्तराती मैंने क्या सप्तराती बाकी शिशु थे, पितरों को अत्यंत सुंदर है, परम मधुर है, उनमें समस्त गुण है उसके नायक के, तो भी गोपियों के साथ में आज वही कृष्ण इस रात्रि में अति सुशुभ अत्यंत सुंदर रूप में मनमत मनमत रूप में यहाँ पर प्रतिभात हुए। क्यों वो भगवान है ना, भगवान अब बढ़ नहीं सकते, वो परिपूर्ण है, किंतु यहाँ पर और भी बढ़ गए गोपियों के साथ, तब ये कैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे कैसे, कृष्ण तो वही रहेंगे जो है, उसके लिए कहते हैं कि मध्य मणिनाम हरिमाना, यहाँ पर देवकी सूत कहा, देवकी सूत माने यशोदा का दूसरा नाम है, देवसूत देवकी, इसलिए तो मध्य मणिना, मध्य में मणिया बहुवचन मणिनाम,
मणम मणिनाम
ना, और हेमाना माने ये तुलना दिया, हेमानाम मणिना, अर्थात स्वर्ण की मणिया माने पीली पीली खूब सुंदर, ये बहुवचन में, और महामरकत, ये महामरकत कौन है, तो एक वचन हुआ ना, और वो सब क्या है,
बहुवचन,
एक बहुवचन, दुवचन है बहुवचन, तो ये एक ही कृष्ण वैसे ही सुशुभ है, ऐसे ही प्रकाशित हुए, जैसे बहुत सी मणियों में एक ही मरकत, मरकत मणि किसको कहते हैं, एक कहते हैं नीलमणि, नील मणि माने सोने से भी अधिक कीमती होती है, उसका रंग कुछ नीला है, और एक होता है इंद्र नीलमणि, कृष्ण है इंद्र नीलमणि, इंद्र माने यहाँ सबसे श्रेष्ठ है, मणियों में भी सबसे श्रेष्ठ जो है, जो जितनी भी मिल सकती है मणियां, उन सब मणियों में है नील ना, वो है इंद्र नीलमणि, और इंद्रनील मणि से भी श्रेष्ठ वही इंद्रनील मणि यदि बहुत से सोने सुंदर सुंदर के पास में रख दी जाए तो उनकी प्रभाव उस पर चमकती है। किस पर?
प्रभाव उस पर।
और इंद्रनील मणि का जो नीलासन है वो कुछ उनके प्रभाव से पीठ पर पड़ जाने से कुछ छिप सी जाती है, उस समय स्वभाव उसकी और लाक्षणा बढ़ जाती है, तब उसको कहते हैं मरक। जैसे एक सुंदर आदमी है किंतु सबसे सुंदरी लड़कियां हैं, बहुत सुंदर, उनके साथ में खड़ा जा हो जाए तो वो भी सुंदर दिख पड़ेगा, सुंदर के साथ में सुंदर दिख पड़ेगा। अब कृष्ण है तो नील इंद्रनील है और उसकी गोपियों की छाया हेमानंद हेम के समान वो गोपियां हैं, वो हेममणि हैं, उनकी आभा इस इंद्रनील मणि पर पड़ी, नील का भाव कुछ कम गया और वो छाया उसमें प्रभा कुछ रम गई और वो अत्यंत उज्ज्वल हो गई, इसलिए उसको कहते हैं महामरक। वही कृष्ण है यदि वो रहते दास्यों के यहाँ सखियों के यहाँ तो वही इंद्रनील बन जाते, उनकी शोभा इतनी नहीं होती,
मरकत नहीं,
गोपियों की वजह से उनके आभा पड़ने से
मरकत हो गया।
दूसरी बात कृष्ण विदग्ध हैं, चतुर हैं, ये बात ठीक है, सखाओं में भी बड़ी विदग्धता होती है, किंतु सखा लोग इतने विदग्ध नहीं होंगे जितना सखियां हैं, इसलिए सखियों के साथ में विदग्ध होने के लिए कृष्ण को टॉप मोस्ट होना पड़ता, इसलिए उनकी सब चीजें निखर आती हैं, सब वो अत्यंत अधिक विदग्ध हो और अधिकांश समय में वो ज्ञान युद्ध करके कहो या सचमुच में वो पराजित हो जाते हैं उनको, इसलिए सुंदरता में भी यहाँ पर जो उनके छवि के द्वारा आक्रांत हो गए हैं ये कृष्ण का जो रूप और सौंदर्य है ये सबसे सुंदर गोपियों के द्वारा भावा होने के कारण, इसलिए कृष्ण एक है, सप्रास बीच में राधा जी है, राधा जी के इतनी क्षिप्र गति से चल रहे, साधारण लोगों ने यही प्रकाश किया है ये एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और किसी ने कहा कि दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण है दोनों ही थी, क्योंकि दो गोपियों को मैं दो को आलिंगन किया ना, उधर वाले कृष्ण है वो भी दो दो गोपियों का आलिंगन किया, अभी ऐसा हुआ कि एक गोपी को दोनों तक इधर से भी कृष्ण हाथ डाल रहे हैं उधर से भी हाथ डाल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाए, दोनों प्रकार से उन्होंने आस्पद कर एक ही साथ में इतनी क्षिप्र गति से चल रहे हैं कि बीच में भी दिखाई पड़ रहे हैं साथ साथ में इनके पास में भी, जैसे एक
पलाश का प्रवर
एक अग्नि जला दिया आग कुछ लकड़ी और उसका एक हाथ में रख करके और ऐसे जोर से घुमाया तो वो कैसा दिखता है?
आग का चक्का जैसा,
वो आपका चक्का जैसा है किंतु आपका चक्का का नहीं, वो तो एक लकड़ी में आग है किंतु इतनी जोर से घुमा दिया ना मालूम होता है कि ये चक्का, और यदि घुमाना करके ऐसे ऐसे कर दिया ना तो इतने इतने तो आग तो एक ही जगह स्थिर है किंतु ऐसे ऐसे कृष्ण एक ही होकर के भी सबके पास में चित्र गति, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो कृष्ण का काय क्यों मानना पड़ जाएगा, तो कृष्ण का तो नारद भी ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान की विशेषता क्या है, इसलिए
इतना
और कह दिया ऐसा लोगों को मालूम पड़ा कि कृष्ण उतने ही हो गए जितने गोपियां थी, अब उसको भी ऐसे ले राधा जी के पास में, अब कहते हैं प्रभु कहे यही साध्यावधि सुनिश्चय, इसलिए कहा यहाँ पर गोपी प्रेम की बात चल रही है, गोपी प्रेम में चल रही है तो कृष्ण की बात क्यों लाई, क्यों लाई, लाने की जरूरत क्या है?
गोपी तो कृष्ण का प्रेम कर रही है, कृष्ण का प्रेम करेंगे।
यहाँ पर खूब जोर से हवा चल रही है। सामने कहा कि देखो भाई ये पेड़ कैसा हिल रहा है चारों तरफ, तो पेड़ के हिलने से हम अनुमान करते हैं जो हवा जोर से चल रही है कि कम चल रही है कि नहीं। हमने कहा कि ये पेड़ हिल रहा है तो हम पेड़ हिलने के लिए कह रहे हैं, हमको ये बतलाना है कि हवा खूब जोर से चल रही है। हमने कह दिया जैसे भाई ये पेड़ खूब हिल रहा है, धूप से इधर उधर हो रहा है, पेड़ इतनी जोर की हवा थी कि पेड़ टूट गया, तो और भी ये मालूम होता है खूब जोर से आंधी थी। उसी चीज से जब जिनके प्रेम के तरंग में कृष्ण भी लुढ़क रहे हो, इधर उधर बह रहे हो, उनको भी कुल किनारा नहीं मिलता है, तो वो समझी वो प्रेम कृष्ण को था नहीं। कृष्ण को इतना करना पड़ा कि एक एक गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक गोपी के पास में जाना। इसलिए गोपियों प्रत्येक गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा है जो सब लोगों ने कृष्ण को भी वशीभूत कर दिया, इसलिए इनका प्रेम इतना उच्च कोटि का है जो कृष्ण को भी वशीभूत कर सकते हैं और गोपी नहीं। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में भी गोपियों के प्रेम को भी बतलाया, जिसका अंदर में जैसा प्रेम होता है कृष्ण के अंदर में भी उसके प्रति वैसा ही प्रेम होता है, किंतु कभी कभी कृष्ण का प्रेम
जब जाता है।
क्यों? यह कृष्ण की बड़ा भारी पुण्य है। इसीलिए वो स्वयं अपने भक्तों से अपने को छोटा बना कर दिखा, प्रभु कहे यही सात जावती है। वो कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, हाँ अब मैं समझा, यही कृष्ण ही कह रहे हैं महाप्रभु के रूप में। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और उस समय तो देखो एक चीज सीखना अलग है और टेस्ट करना अलग है ना? कुछ लोग हैं रसोई बनाना नहीं जानते, रसोई बनाने के बाद अरे भाई ये ठीक नहीं आ रही, अच्छा भाई इसमें क्या कमी है, तो वो बतला नहीं सकते कि क्या चीज की कमी है, थोड़ी चीज की कमी है और थोड़ा सा चीज इसमें दे दिया जाए, नमक की कमी है थोड़ी, तो नमक उसमें थोड़ा सा दे दिया एकदम टेस्टी, तो जो बनाने वाला वो नहीं जानता है, जो टेस्ट कर रहा है वो तो टेस्ट कर रहा है, कृष्ण टेस्ट कर रहे हैं उसको प्रेम का, वो नहीं जानते कि भाई ये कैसे इसमें टेस्ट है। आज महाप्रभु कहते हैं हाँ आज समझ गया सुनिश्चित कृष्ण रूप में पूर्ण कर, वो उन्होंने प्यार किया उन्होंने भी प्रेम किया, उन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रेम किया, सखाओं ने प्रेम किया इन्होंने प्रेम किया, मैया ने प्रेम किया इन्होंने प्रेम किया, उस समय में
टेस्ट में लगे,
क्यों टेस्ट में लगे, कभी कभी ये सब हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में ये सब का वर्णन, किसी गोपी श्रीमती जी से पूछ रहे तुमने कैसा आस्वादन, हमको पता ही नहीं, मैं गई हूँ उनसे मिली और बस मैं अपने को सुन ली, अच्छा तो ठीक है तुम दूसरे दिन शिक्षा करके आए, हम तो शिक्षा आती नहीं है, तुम जाना तुम बड़ी बुद्धिमती है, तुम सिख कर आना आपका बतला ऐसे ही कृपा करी कहो यदि आगे की छू हो, कहते हैं ये मैं समझा बहुत प्रसन्न हुआ समझ गया, किंतु आगे किसे कुछ पर हो क्यों राय कहते हैं बिहार आगे पीछे कौन है नो जाओ जाने एक दिन नहीं जानी आज से त्रिभुवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस चीज को पूछ सके, मैं नहीं जानता। आज उनको आश्चर्य ऐसा भी व्यक्ति है जो कि ऐसा प्रश्न कर सकता है, कभी कभी प्रश्न नहीं, हम लोग कहें तो कोई प्रश्न ही करना नहीं जाना, आकर के बैठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ की चीज यहीं पर छोड़ जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर वहाँ से आरंभ करते हैं, फिर जाते हैं तो सब छोड़ देते हैं। रात में चिंता आती है, कुछ भी आता है, जिसको आता है जो सब छोड़ जाते हैं। इसी का नाम अनुशीलन है, जो सुना उसको विचार किया, अपनी चीज बना लिया, सब तो ये थी, और नहीं तो सुन करके और छोड़ करके चले गए, या सुना कोई भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पहुंचा, बीन बज रहा है बीन बाजा, और भैंस बैठ करके बाजू मारे, उसको कोई शिक्षा नहीं, क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, सुन से बज रहा है कि साल से बज रहा है, ऐसे सुनो समझो, इसमें प्रवेश करो, आदि अनुसार।